राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
आभार प्रकट करते हैं घनश्याम जी का और परिवार का, और धन्यवाद करते हैं आपका जो आप सब प्रातःकाल हरि कथा में पधारे हैं। भजन जो अभी गाया जा रहा था, श्रवण कर रहे थे और गा रहे थे, ये भजन ब्रिटिश शासन काल में एक जज का लिखा हुआ है। ब्रिटिश रूल के समय में बंगाल और ओडिशा के भिन्न स्थानों के ऊपर केदारनाथ दत्त मजिस्ट्रेट थे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा न्याय को जानने वाला और अन्य भाषाओं के अंतर्गत भी जिसको पूरा ज्ञान था उसने इस भजन को लिखा है। एक जज का लिखा हुआ ये भजन है जो भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रमा हुआ था। आध्यात्मिक उनका नाम इस भजन के अंत में आता है, भक्ति विनोद। भक्ति विनोद और फिर उपाधि उनको दी गई ठाकुर। ये उनका इस भजन के अंतर्गत दो विशेष बातें हैं। एक तो इस संसार के अंदर सब सोए हुए हैं, चाहे उठ के जागते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब सोए हुए हैं। इसलिए पहला ही शब्द है जीव जागो, जीव जागो। शरीर तो जाग रहा है, उठ रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन जीव जो इसके अंदर आत्मा है वो सोया हुआ है। सोया हुआ है का मतलब क्या है? जब आप सोते हो तो न खाते हो, न पीते हो, न कुछ करते हो ना, तो आत्मा का भी कुछ भोजन होगा ना। आत्मा का भोजन है क्या वो आगे कहेंगे। आप जब उठते हो तो भूख लगती है तो मांग के लेते हो ना कुछ के, मेरे को तो भाई भूख लगी है मां, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यही चीज उठ मांग के लेते हो ना, कह रहे मेरे को दो, मेरे को दो, भूख लगी है, भूख मेरे को बहुत बड़ा परेशान कर रही। संसार में शरीर के लिए, को आवश्यकताओं के लिए तो सब कुछ मांगते हैं, लेकिन जीव जो है वो जाग नहीं रहा है, सो रहा है। कौन जगाएगा जीव को? गौरचंद्र बोले, गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कली काल में 500 वर्ष पहले, अब तो 500 कितने हो गए, 525 के करीब हो गए, 524-25 वर्ष पहले भारतवर्ष के गांव गांव में, गली गली में उच्च स्वर में गा गा कर कहने लगे जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, तो किसी ने बोला कहां सोए हुए हैं, हम तो काम कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं सो रहे हैं? तो कहते सोए कहां हुए हैं, कत निद्रा जाओ माया पिशाची न खोले। अब जाग, शरीर आपका जाग रहा है, लेकिन आप माया की गोद में सोए हुए हो, माया की गोद में सोए हुए हो। संसार में माया का एक रूप, पैसे को माया बोलते हैं सब, माया कहते हैं ना पैसे को, और उसी के नशे में सब सो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उसी के अलावा और किसी के दिमाग में कोई चीज है ही नहीं, इतना उसके नशे में है कि हमको अपने जागने की भी चिंता नहीं रहती है कि मैं कौन हूं, कहां जाना है, कहां से आया हूं, ये तो विचार कभी किया ही नहीं हमने। माया पिशाचनी, पिशाचनी किसको कहते हैं? खून चूसने वाली, पिशाची कहते हैं खून चूसने वाली, और हम खून पसीना एक करके इस माया को कटा कर रहे हैं। कटरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? माया पिशाचिनी की गोद में सोए हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम बड़े सुखी हैं। सोए कहां हुए हैं? माया की गोद में सोए हुए हैं। कैसी माया है? पिशाचिनी है, खा जाएगी, खा जाएगी ये माया, समाप्त कर देगी। दिन रात बीतता जा रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है। हमारी जिंदगी का एक एक दिन रोज कम हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है। ये घड़ी है, घड़ी जो हाथ में सबके बंधी हुई है, ये जिसका एक सेकंड का जो कांटा चल रहा है, ये हमारी उम्र को काट रहा है। ये टिक टिक को कट कट मानना चाहिए कि हमारे जीवन का एक क्षण जा रहा है और हम जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आप पहले से भजियो बोलियो ऐसे संसार भीतरे, इस दुनिया में आने से पहले आप वचन करके आए हो कि हम जाके अब जागेंगे, सोए नहीं रहेंगे। कौन सोया हुआ है संसार में? ऐसा देखा जाए तो पशु पक्षी जो हैं, जानवर हैं, वो बेचारे आत्मा की दृष्टि से सोए हुए हैं। चाहे खाए पिए घूमे, लेकिन वो कहीं मंदिर में जाते हुए देखा नहीं होगा आपको, कुत्ते बिल्ले को प्रसाद जैसे के भजन करने के लिए जाता हो, ये आपको दिखाई नहीं देगा। मानव है जिसको ये वचन करके आए हैं हम। कब वचन करके आए हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है और उल्टा लटका होता है और प्लास्टिक की थैली में आदमी बंद हो तो कितना कष्ट होगा, ऐसे बंद होता है, तब उसको 100 जन्म पूर्व अपने याद आते हैं और अंदर बहुत पीड़ा में हाथ ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भगवान इस मुझे बहुत बड़े दुखदायक की स्थिति में मैं पड़ा हूं, इससे मेरे को निकाल लीजिए, मैं आपका भजन करूंगा, अब मैं संसार में फंसूंगा नहीं। वचन करके आता है। हम सब वचन करके आए हैं लेकिन भूल गए। जो आदमी अपने वचन को भूलता है उसको क्या कहेंगे? कब आदमी अपने वचन को भूलता है? जब सोया हुआ होता है। मैंने किया बताया, मैं नींद में था, मुझे पता नहीं लगा। तो हम जाग रहे हैं लेकिन अपने वचन को भूल रहे हैं। हम वचन करके आए थे कि भगवान आपका भजन करेंगे। हम सब लोग भगवान से ये वायदा करके आए हैं। भूल या रही ले तुम्ही अविद्या भरे। कैसे भूल गए? अविद्या के कारण भूल गए। अविद्या और विद्या, सब लोग पढ़े लिखे हो, हम इसको विद्या मानते हैं, लेकिन ये विद्या नहीं है। ये शरीर के भरण पोषण का एक आपने साधन जुटा लिया है। इस विद्या के द्वारा सिर्फ शरीर को पालन पोषण कर सकते हैं। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन क्या है? क्या है विद्या रूपी वधु का जीवन? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। विद्या नहीं है ये अविद्या है। हमारे वचन जो वायदा हमने भगवान से किया वो हमारे को भुला दिया। अविद्या कैसी होती है पता है? भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के छोटे बालक हैं और कंस ने पहला असुर जो गोकुल में भेजा वो पूतना है। भूतना है तो राक्षसी, लेकिन आई कैसी है, गोकुल में किस रूप में आई है, हेम अंगा, हेम अंगा, हेम मतलब सोना, सुंदर, बहुत सुंदरी बन के आई। स्थन के ऊपर कालकूट विष लगा के आई है, रूप भी सुंदर, हेम अंगा रूप क्यों लिखा, कि इस दुनिया के लोगों को मोहित करने के लिए एक तो सोना और एक स्त्री, ये दो रूप ऐसे हैं जो दुनिया को माया के मोह में ऐसा लपेट देते हैं कि उसको अपना, उसको पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। उस पूतना को गोकुलवासी कोई नहीं पहचान सका कि ये कौन है। कोई कह रहा है लक्ष्मी आ गई, पता नहीं कहां से पधारी है, ये तो कोई इंद्र से के स्वर्ग से सची आ रही है क्या, देव उसको देवी मान रहे थे। इसको पूतना को कभी अविद्या बोलते हैं, अविद्या है पूतना, दिखता है चमचमाती और लगता है कि हमारा हित करेगी, लेकिन लगा हुआ विष है और आई मारने है, इसको पिशाचनी बोलते हैं। वो है पिशाचनी। ये दो रूप संसार के अंदर माया का रूप है, जिसको यहां कहा है ना माया रख पिशाचनी। इसको आप ऐसे मत समझना स्त्री पुरुष कोई, हम ऐसे बात कर रहे हैं संसार की दृष्टि से, इनके आप बैठे हैं स्त्रियां हैं ये पुरुष है, ये भाव नहीं लेना। माया का रूप क्या है ये लेना। ये तो शरीर आपका अगले जन्म में आप में से कोई पुरुष बना रहा होगा, अभी स्त्री हो गया, इसमें तो कोई सदा के लिए रहने वाला तो ये रूप है नहीं हमारा, तो बदलता रहता है, कभी कोई स्त्री बनता है कभी कोई पुरुष बनता है। लेकिन माया का रूप संसार में, ये दो रूप में माया सबको छलती है। आप थोड़ा सा ध्यान करके देख लीजिए, इन दो के अंदर हम इतने फंसे हुए हैं दुनिया के अंदर कि हमारे को भगवान याद नहीं आ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना आई तब क्या किया, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा कि ये देखने के योग्य नहीं है, लगता भले सुंदर है, लगती बहुत सुंदर है, हाव भाव भी अच्छे है, कह रही है दूध पिला रही, लेकिन मैं जानता हूं कि अविद्या है, इसका इलाज केवल इसके प्राण निकालना है और कोई इलाज नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पहला ही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की है। छह दिन के छोटे बालक हैं, पहली माया के रूप में, अविद्या के रूप में, धोखे के रूप में, भक्तिविनोद ठाकुर तो लिखते हैं ये तो झूठे गुरु के रूप में, लोगों से वायदा करते हैं कि हम आपका उद्धार कर देंगे, लेकिन है वो भी माया का रूप, जो भगवान की भक्ति नहीं सिखाते हैं, संसार के अंत बंधन में डालते हैं। उन पूतना का जो उन्होंने भाव बताया है वो ये बताया है। जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले माया पिशाचिनी, कब कब तक हम उसकी गोद में सोए रहेंगे। हम वायदा करके आए थे भगवान से, हमको वायदा निभाना चाहिए। आठवें स्कंद श्रीमद् भागवत में तीन विषय हैं। पहला विषय है जब आपत्ति हो, विपत्ति हो, दुख हो, संकट हो, तब भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी पूतना वाले प्रसंग में नंद बाबा गोकुल से लौटते हुए वसुदेव ने जब कहा कि आप जल्दी लौट जाइए, गोकुल में उत्पाद होने वाले हैं, तो भगवान का शरण लिया, भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान का शरण लिया का मतलब अपने घर में जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन भगवान कहां है जिसका शरण ले। बोला सबके हृदय में बैठा है, कहीं और जाने की जरूरत तो नहीं, भगवान कहीं दूर तो नहीं है, अपने दिल में बैठा हुआ है, तो उसका शरण लिया। आपत्ति विपत्ति में भगवान का शरण लेना। और दूसरा आठवें स्कंद का ये पांच अध्यायों में वर्णन है गजेंद्र मोक्ष के रूप में। गजेंद्र जब संकट में पड़ गया, ग्रह ने उसके पांव को पकड़ लिया, मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। ये तो ठीक है, हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, कथा हो गई, लेकिन इस संसार के अंदर हाथी सूखे के ऊपर रहने वाला है, मगरमच्छ पानी के अंदर रहने वाला है। मगरमच्छ ने पानी में हाथी का पांव पकड़ा है, अब होगा क्या? मगरमच्छ का बल तो बढ़ता जाएगा, हाथी का बल कम होता जाएगा। इसलिए अब आज हाथी कहता है मेरा यहां कोई और रास्ता नहीं है। हमारी स्थिति यह है, काल रूपी मगरमच्छ ने हमारा भी पांव पकड़ के रखा हुआ है। हम इस संसार सागर में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, ये समुन्द्र है, इसमें काल रूपी मगरमच्छ है जिसने हम सबका पांव पकड़ा हुआ है। उसकी ताकत बढ़ रही है, हम रोज प्रतिदिन हमारी ताकत कम होती जा रही है। कोई मगरमच्छ के मुंह में 10 साल तक गया है, कोई 25 तक गया है, कोई 50 तक गया है, लेकिन सारे काल रूपी मगर के मुंह में पड़े हुए हैं। ये काल रूपी मगर के मुंह से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है सवाय हाथ जोड़ के ऊपर भगवान को प्रार्थना करना। वही आएगा तब उद्धार होगा। हाथी के सारे संबंधियों ने प्रयास किया, एक हाथी तो गजराज था, वो जब चलता था उसके पांव धरती के ऊपर पड़ते थे, धरती कांपती थी, शेर भागते थे, ऐसा हाथी था। उस हाथी के इतने सारे परिवार वाले पीछे खींचने का प्रयास किया, कोई नहीं निकाल पाया। केवल उसने जब प्रार्थना की गोविंद को, तब भगवान ने आकर मगरमच्छ को मारा और हाथी का उद्धार किया। तो इससे हमको हमारा पांव भी मृत्यु रूपी मगर के मुंह में फंसा हुआ है, कोई विश्वास है, आता है कि नहीं आता है? एक चित्र पहले छपा था, एक सांप, सांप खाता है मेंढक को, मेंढक सांप के गले में पूरा चला गया, केवल मुंह बाहर है, उधर से जीवा निकालकर कुछ खाने के लिए लपलपा रहा है। तो किसी ने कहा ये मेंढक मरने जा रहा है, अभी ये कहां से इसे ऐश अयाशी करने का सोच रहा है? बोला ये मेंढक आपको दिखाने के लिए, आप भी काल रूपी सांप के मुंह में 50 साल 70 साल तक पहुंचे हो, तब भी भोग के लिए बाहर जीवा निकाल रहे हो। हम सबकी स्थिति ये है कि काल रूपी मगर ने हमको पकड़ के रखा है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए जब आपत्ति विपत्ति हो। और दूसरा प्रसंग जो उसके आगे है वो है, जब सुख संपत्ति हो, सब कुछ हो, तब उदारता के साथ सेवा में लगाना चाहिए, दान कर देना चाहिए। जो खीर सागर मंथन से जो कुछ निकला सब दान किया, और वो क्या निकला दान किया? एक तो धर्म के लिए कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी, जिससे धर्म का काम चलने लगा। एक लक्ष्मी निकली जिससे सारे संसार का पालन भरण पोषण हो रहा है, वो खीर सागर से निकली, और खीर सागर से अमृत निकला जो देवताओं को मिला, तभी अभी तक देवता हमारी सब आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं भगवान की कृपा से। तीसरा प्रसंग है आठवें स्कंद का, जब वचन किया जाए तो उसको पालन करने के लिए सर्वस्व अपना दाव पे लगा देना चाहिए। गुरु मना करे तो भी वचन को नहीं तोड़ना चाहिए, और भगवान छल करे तब भी अपने वचन के ऊपर टिका रहना चाहिए। ये तीसरा प्रसंग है आठवें स्कंद का, बलि महाराज का प्रसंग है। वचन कर दिया था मैं आपको दान दे दूंगा, अपने वचन से नहीं घूमे, शुक्राचार्य ने मना की, उसकी बात नहीं मानी, भगवान छल करने के लिए आए, छोटे वामन बन के आए हो और लेने के समय बड़े हो गए, लेकिन वचन से नहीं हिले। तो वचन हम भगवान से करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे, और वचन को नहीं अगर मानते हैं तो फिर मानव कहनाने का अधिकार ही नहीं है। आदमी तो वचन पहले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए, ये मर्यादा है। हम भगवान से वचन करके आए हैं कि नहीं, तुम्हारा भजन करेंगे, हमें मालूम नहीं, हम कहेंगे जान छूट गई। तो वो तो आसानी से कह सकते हैं। एक आदमी रास्ते में जाते हुए किसी को मार दे और पकड़ के उसको पुलिस ले जाए, जज कहे तुमने इसको मारा था, बोला मुझे पता नहीं, मारना कोई गलत काम होता है, आई डोंट नो भाई, ला का मुझे पता नहीं है कौन सा कानून लगेगा, तो क्या उसको छोड़ देंगे क्या? कौन सा कानून मुझे लगेगा ये तो कोई, हमें तो मालूम नहीं है कौन सा कानून लगेगा, तो इसका मतलब हमारे ऊपर कानून लगेगा कि नहीं क्या? हम नहीं जानते हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दूसरा जो जिसने कानून बनाया है वो हमको छोड़ देगा। मैं तो अनजान हूं, तुम अनजान हो, लेकिन जो तुमने काम किया है ये तो पनिशेबल है, इसका दंड तो मिलेगा ही। घर में पता है हमारी स्थिति कैसी होती है, ये जारी है ना, ये छाती से लगी होती है, हाथ बंधे हुए होते हैं, हाथ बंधे हुए होते हैं ऐसे, और ये यहां लगी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ है, वहां हमने प्रार्थना करके सर इतना झुकाया है कि अब हमको यहां से बाहर निकालो, ये प्रार्थना की मुद्रा है। और जो ऐसे करता है वाकई गर्भ से बाहर निकल के आता है, लेकिन जो गर्भ में भी कभी कभी ऐसे होता है गर्दन, उसका कभी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं, उसको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन होता है। ये मेडिकल साइंस में एक शब्द है, डिफिकल्ट लेबर किसको कहते हैं, मतलब जिसका प्रसव घर में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका नेक ऐसे हो गया है, नेक एक्सटेंड जिसका हो जाता है वो इस संसार में नॉर्मली नहीं आ सकता है, उसका ऑपरेशन से निकालना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, इस दुनिया में जो ऐसे रहेगा वो भवसागर से निकल जाएगा, जिसका गर्दन ऐसे हो गया उसकी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। इसका अर्थ है निम्रता से भगवान को प्राप्त करना संभव है, अहंकारी कभी भी संसार से तर नहीं सकता, उसके इसलिए किताब से पढ़ सकते हैं, फिर गुरु करने की जरूरत क्या है, हमारे अहंकार के ऊपर चोट सिर्फ गुरु लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता। तुम गधे हो कहने का अधिकार बाप को है अपने बेटे को, गुरु को है अपने शिष्य को कहने का, शिष्य को मूर्ख बन के रहना पड़ता है तब सुधर सकता है। तो अहंकार सबसे बड़ा बाधा है संसार के अंदर, अहंकार हमारे बंधन का कारण है, अहंकार को तोड़ने का कोई साधन नहीं, जब अपने से बड़ा होगा तब अहंकार छोटा होगा। एक सेठ के घर में साधु गया, सेठ ने जैसे सेठ घर में जाते हैं दिखाते हैं तो ये जो फ्लैट सारे पड़े हैं ना, ये महाराज आपकी कृपा से अपने हैं, अच्छा है, ये सामने फैक्ट्री महाराज आप संतों की कृपा से अपनी है, ये जो फलाने कंपनी की बसें चल रही है ना, ये सब आपकी कृपा से अपनी है। महाराज ने कहा इसको अच्छा खासा अहंकार है भगवान की कृपा से। तो उन्होंने वो जो वर्ल्ड का मैप ग्लोब पड़ा था ना, वो उठा के कहा जरा आपका देश इसमें कहाँ है दिखाना, तो एक चींटी की साइज का उसके देश का नाम था। बोला तुम्हारा इसमें सिटी कहाँ है जिसमें तुम रहते, बोले इसका तो नाम नहीं है इसमें, बोले तुम्हारे वाले दुकान, अब तो दुकान भी नहीं है, सिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब बड़ा को दिखाया तब वो छोटा हुआ ना, छोटू के बीच में तो बड़ा ही दिखता है। अहंकार तब कम होता है जब अपने से कोई बड़ा होता है, तब छोटा होना पड़ता है। तो हम भगवान से वचन करके आए, हम भूल गए हैं, लेकिन इसको याद कराने के लिए जिससे वचन किया है वो ही आ गया याद कर, ये ऐसे समझ लो, उधार आपसे जो ले जाता ना वो कहता है मैं भूल गया हूं, लेकिन आप भूलते हो क्या, डंडा थारा उधार पे करते हो ना, देने वाला भूलता है। मुझे पुराने जमाने में जब फोन होते थे ना, ऑपरेटर बीच में होता था नंबर मिलाने वाला, तो एक आदमी पैसे मांग रहा था, भाई सुनो हमारे पैसे भेज दो, बोला आवाज नहीं आ रही है, भाई जरा पैसे भेजना तो जो आपको वो था, पैसा आवाज नहीं आ रही है, तो बीच में ऑपरेटर ने कहा मैं तो सुन रहा हूं, बोले तुम सुना तुम दे दे। मैं सुन रहा हूं लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता हूं। तो असल में जो देने वाला होता है ना उसको भूल जाता है, लेने वाले को कभी नहीं भूलता है, ये ठीक है कि नहीं। तो भगवान से वायदा करके आए हैं तो वो जिससे वायदा किए वो ही आया वापस, कहा तुम वायदा करके आए हो भूल गए हो, इसलिए मैं आया हूं। भगवान इसीलिए अवतार करके आते हैं कि हम उससे वायदा करके आते हैं, ये तो जैसे बिजनेस का वायदा करके आप भूल गए, लेकिन जिसे किया है वो तो आएगा ही आएगा ना, कि भाई आप करके आए हो ना तो निभाओ ना, इसलिए आगे कह रहे हैं यहां कि आप मुझसे वायदा करके आए थे, आप इसको भूल गए माया की वजह से, अब क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लयते अमी यहां नो अवतार, तुम्हारे को लेने के लिए मैं यहां अवतार लेके आया हूं, उतर के आया हूं नीचे। ये हुई भगवान की करुणा। हम तो मूर्ख हैं, भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। ये भगवान की करुणा दया है। तुमको लेने के लिए मैं यहां आया हूं, इसे चेतना महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। इस दुनिया से जो जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं? कोई अच्छा शब्द लिखना हो तो क्या लिखते हैं उसके लिए? स्वर्गवासी लिखते हैं। इसका मतलब यहां से जो स्वर्ग में जाएगा वो सुखी होगा, तब लिखते हैं ना। हाँ, भाई यहां से सुखी होगा तब स्वर्गवासी लिखते हैं ना। तो इससे अच्छी जगह में क्या होगा तब लिखते हैं ना, बुरी जगह तो नहीं लिखेंगे कम से कम। उससे अच्छा कुछ लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? वैकुंठवासी तो लिखते हैं ना। तो यहां अच्छे से अच्छी जगह में जाने का प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ये इतनी अच्छी जगह नहीं है ना। हम क्यों दूसरी जगह ऐसे ही क्यों नहीं लिखते हैं कि हमारा घरवासी, सूरत वासी, ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? सूरत अच्छी नहीं लिखते, बॉम्बे वासी लिख दो, अमेरिका यूएस वासी लिख दो, ऐसे क्यों लिखते हैं? मतलब ऐसे क्यों लिखते हैं? मतलब ये अच्छा नहीं है, हम जानते हैं कि इससे अच्छा कोई और जगह है, ये भी हम मानते हैं, फिर भी उधर जाने का प्रयास। एक जगह एक भगवत गीता के भावार्थ में जहां भगवान कहते हैं भाई मेरा धाम ऐसा है, उसमें प्रभुपाद ने लिखा है इस दुनिया में जब अमेरिका का समाचार लोग सुनते हैं कि वहां बहुत सुख सुविधाएं, बहुत अच्छी कमाई है, तो वहां जाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। जब वहां की खबर सुनते हैं तो वहां जाने के लिए शौक होता है। तो जब भगवान कहता है मेरे पास आने के बाद कभी मरना नहीं पड़ेगा, बीमार होना नहीं पड़ेगा, दुखी होना नहीं पड़ेगा, तो वहां जाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? जब यहां भी किसी अच्छी जगह का समाचार सुनते हैं तो वहां जाते हैं, यहां से वहां शिफ्ट हो, ऐसा विचार आता है ना। आखिर आप में से सब लोग यहां बैठे हो, सूरत के तो सब हो नहीं, कहीं और से आए हो ना, तो वहां से यहां अच्छा है इसलिए आए हो ना, कि यहां आपको कुछ अच्छा कमाई मिल रही है इसलिए आए हो ना। तो किसी ने बताया होगा भाई सूरत चलो, कोई हमारा वहां रिश्तेदार आया होगा तब बताया, कब आए हो ना। तो यहां हम आपको बता रहे हैं इससे अच्छा वहां बिजनेस है, वहां क्यों नहीं चलते? तो ऐसे मानना चाहिए ना, इसको ऐसे समझना चाहिए कि इससे अच्छी चीज और जगह है। मरने के बाद वहां जाएंगे ये बात नहीं है, जीते जी उसका अनुभव किया जा सकता है, जीते जी उसका अनुभव किया जा सकता है। ये भगवत गीता भागवत की शिक्षा मरने के बाद की नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति कि हम घर छोड़ेंगे तो भगवान मिलेंगे, मरेंगे तो उसके बाद भगवान मिलेंगे, ये सिद्धांत नहीं है हमारा। इस दुनिया में जीते जी अभी यहां भगवान मिलेगा, कहीं और भगवान गया नहीं है और कहीं और रहता भी नहीं है। और ये श्लोक तो आप सब लोग जानते हैं, जब नारद ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपकी प्राप्ति हमको कहां होगी, तब का ना हम तिष्ठानि वैकुंठे, मरने के बाद आप आओगे वैकुंठ में तब मैं मिलूंगा ये बात नहीं है, न योगी नाम हृदय शुभा, न घर छोड़ के योगी बन के हिमालय में गुफा में मिलोगे तो मैं मिलूंगा ये बात भी नहीं है। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि मा नारद, जहां घर में मकान में दुकान में मेरा भजन करोगे मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। तो भगवान जीते जी मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे ये बात नहीं, अभी यहां इस वक्त मिलेंगे। ये सत्य है, केवल विश्वास चाहिए, केवल विश्वास चाहिए। और ये भी अनुभव के आधार पे हम आपको कह रहे हैं, अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, विश्वास चाहिए। भगवान अभी यहां मिलता है और रोज भगवान को देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, दिखता है लेकिन नहीं देखना चाहते हैं तो और बात है, रोज रोज दिखता है, सुबह शाम दिखता है, हर समय दिखता है जो देखना चाहे। प्रेमंजन श्रित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय अवलोक्यंती, यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम, गोविंद माधि पुरुषम तमाम बजान। पालन पोषण करता है, ये क्या करते हैं मंदिर में जाके, क्या बोलते हैं सब, तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें भी यही कहते हैं ना जाके, तू ही हमारा माता है, तुम्हें हमारा पिता है, तुम्हें ही बंधु है, तुम्ही विद्या है, तुम्ही धन है, द्रविणम तुम्हें, द्रविणम का मतलब धन, हमारा धन तुम है, लेकिन तुम्हारे को रुपया भी नहीं देंगे, रखेंगे हमारे अकाउंट में। सब बोलते ही एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, तुम ही और कोई नहीं है। और यहां यही शब्द इसके बाद लिखा है कि मैं वापस आया हूं आपको लेने के लिए, तुम्हारे ले से अमी इहानु अवतार, अमी बिना बंधु और के आछे तुम्हारे, मेरे अलावा और तुम्हारा बंधु कौन है, मेरे अलावा और तुम्हारा और रिश्तेदार है कौन, तुम्हारे साथ कोई जाएगा, तुम्हें कोई लेने आया है कभी, आप में से खुद कितने अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाते हो, अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते नहीं हो आप, और भगवान वो वैकुंठ से यहां आपको लेने आता है, तो कौन प्रेम हमसे ज्यादा करता है, क्यों नहीं जाते हैं बच्चों को स्कूल में आप खुद लेने, टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है, धंधे में बैठे हैं, क्यों धंधे में बैठे हैं, पैसा कमाना है, माया पिशाचिनी गोद में इतने बैठे हैं, अपने प्यारे बच्चे हमको किसी और के हवाले कर रखे, कर रखे कि नहीं रखे, विश्वास के ऊपर कर रखे, और भगवान हमको अपने बच्चे मानता है, इसलिए लेने के लिए आता है कि आप हमारे बच्चे हो, वो बच्चे हमको मानता है अपने, और इसलिए कहता है मैं लेने के लिए आया हूं। बहुत गंभीर विषय है असल में, यहां से जाना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा एक दिन, इसमें भी कोई मतभेद है क्या, इस दुनिया से एक दिन जाना ही पड़ेगा, कहां जाएंगे, कोई लेने आएगा क्या, किसी को कोई लेने आते हुए देखा है, घर में रखने के लिए कोई तैयार है किसी को, कहां, हमने एक बार कहा था, आप तो सब साधु लोग हो, मरने के बाद अपने सगे पिता की हड्डियां भी कोई घर में लाके नहीं रखता, शमशान से जो हड्डी आती है ना, वो भी मंदिर में रख के आता है, घर में नहीं लाता है, कहीं भूत हमारे घर में ना जाए, अरे बाप का तेरा भूत कहां से आए, घर इसने बनाया, उसकी हड्डियां तुम घर में लाओगे नहीं, वो तो उधर ही रख के आएंगे कि मंदिर में रख के आनी, और फिर वो हरिद्वार वहां से सीधी लेके जाएंगे, तर जाए, ऊपर पहुंच जाए, वापस नहीं आए, यही हम चाहते हैं कि नहीं, ये ठीक है गलत है, फिर हम ऐसे, आप लोग तो भले आदमी है, लेकिन ऐसे आदमी के ऊपर हमारे को कभी आक्रोश होता है तो कहते हैं, लेकिन मुर्गे की और बकरे की हड्डियां फ्रिज में रखते हो, ये कोई अच्छे आदमी हो, बाप की रखते नहीं हो, बाप की हड्डियों को रख के आओ मंदिर में, और मुर्गे की और बकरे की हड्डी फ्रिज में रखते हो, ये कोई बुद्धिमानी है, वो भी तो मरी हुई है, बकरे को गधे की हड्डी, कौन सी बुद्धिमानी का इसमें बात कर रहे, तो जाना ही यहां पड़ेगा तो कहां जाएंगे, जो इसका विचार नहीं करता है और जाने की तैयारी नहीं करता है वो मूर्ख है, और जब बहुत ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में हो जाते हैं तो भगवान को आना पड़ता है, अरे हैं तो मेरे बच्चे मूर्ख हो गए हैं, अब इसको जगाना चाहिए, ये सो गए हैं सारे, वैसे साधु और भगवान सिर्फ जगाने के लिए होते हैं, और जगाता है जब कोई उठना नहीं चाहता है, आपको सुबह बच्चों को उठाते हैं, कितना आसान है उठाना बच्चों को सुबह स्कूल के लिए 7 बजे, हाँ क्या करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है बच्चों को उठाने के लिए कि नहीं, स्कूल जाने के लिए, तो किसी को उठाना बहुत इतना आसान नहीं, उठाने में कष्ट होता है, उठने वाले को बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर उठाते क्यों है, सोने दो ना उसको बच्चे को, हाँ क्यों उठाते बच्चों को, स्कूल नहीं भेजना है, सोने दो, बच्चा तो यही चाहता है ना, फिर आप क्यों भेजते हो उसको, अगर आप अपने बच्चे को उठाते हो थोड़ा कष्ट होता है फिर भी उसको उठाते हो, ऐसे भगवान भी हमको, हम नहीं चाहते हैं जो कुछ हमारे पास आता है उसको छोड़ने के, लेकिन उसको भी इतना ही हमारे लिए प्रेम है, हम इससे ज्यादा प्रेम है बंधु, तो वही ऐसी हमको उठाता है कि उठो उठो, कब तक यहां पड़े रहोगे, मरे रहो, मरते रहोगे, दुख भोगते रहोगे। इस दुनिया में सुखी सिर्फ दो आदमी है, या पागल है उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, या कोई साधु है जिसको वैसे भी किसी चीज की परवाह नहीं, बीच में कोई भी सुखी नहीं। अब आप पागल की लिस्ट में जाना चाहोगे नहीं, साधु हो नहीं तो अब ये समस्या है कि आप क्या हो, ये देख लो। दुनिया में दो ही सुखी है और कोई सुखी नहीं। एक पागल सुखी है, पड़ा है तो खिलाए, वो खिलाए नहीं खिलाए नहीं खिलाए, उसको किसी की परवाह है नहीं। और दूसरा साधु सुखी है जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है, गाड़ी हमारी चला रहा है, हमें चिंता नहीं, बाकी सारे दुखी। तो आप जगाने के लिए आए हैं, लेकिन हम तो बीमार हैं यहां, हमको तो माया ने इतना, हम आदि हैं, आदत हमारी इतनी पक्की हो गई कि अब तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। तब कहते हैं मैं आया हूं, महाप्रभु क्या कहते हैं, अमी बिना बंधु आर कछु, तुम्हारा हमारे अलावा और कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं है। और तब कान में कहते हैं, तुम ही रोज मंदिर में मुझे कहते हो ना तुम्हें माता या पिता, पूछते कि मैं यही कहने आते हो रोज ना, इसलिए तो मैं आया हूं, तुमने कहा था कि मैं माता पिता हूं, तभी तुम्हें बुलाने आया हूं ना, तुम्हें उठाने आया हूं, चलो। एक आदमी ने कहा कि मंदिर में जब हम जाते हैं ना तो जूते तो बाहर उतार के जाते हैं, और जूता अगर बाजार से कोई अच्छा लिया आजकल भाई वॉकिंग वाला 4-5 हजार वाले आना, तो भगवान की मूर्ति को देखे तुम्हें वह माता, और फिर जूता याद आता है, तब पीछे के देखे कहते तुम्हें वह माता है, तुम्हें माता भी जूता याद आता है। आज ध्यान पीछे वाली चीज में ज्यादा होता है। अच्छा जूता बाहर रख के मंदिर में जाके भगवान का ध्यान कोई नहीं कर सकता, गारंटेड। जब अच्छा जूता जिसको आप घर के बाहर रख के आते हो वो पहन के भगवान को याद नहीं कर सकते हो, तो अच्छे से अच्छी चीजें जो कठी रखी है उनके अंदर कितना मोह रहता होगा। जूता तुझ से तुझे उसको बाहर रखते हैं घर में, बाहर कोई जूता अंदर नहीं लाता है, उसमें इतना मोह है कि भगवान के मंदिर में जाता है भगवान याद नहीं आता है, जूता याद रहता है। तो बाकी जो चीजें हमने इकट्ठी करके रखी है उसमें इससे कितना ज्यादा मोह होगा, कभी इसके ऊपर ध्यान दे के देखो। जूते में इतनी आसक्ति है जो केवल मारने के काम आता है और किसी काम का नहीं है। कितनी आसक्ति हमने बना रखी है संसार में, कोई इसीलिए हम नहीं जाना चाहते ना, तो जगाने की आवश्यकता है। फिर क्या है, एक औषधि माया निशिवार लागे, मैं दवाई लाया हूं आपको जगाने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए मैं एक दवाई लाया हूं। ये दवाई ऐसी है जैसे बच्चे को टीके लगाने जाते हैं, पोलियो के ड्राफ्ट पिलाने जाते हैं, क्यों, पोलियो तो खत्म नहीं होगा उसे, के पोलियो के कीटाणु खत्म तो नहीं होते ना, जो पोलियो वायरस तो है चारों ओर घूम रहा है, लेकिन आपने अगर टीके लग बच्चे को ड्राफ्ट पिला लिया तो उसको पोलियो नहीं होगा, यही इसका अर्थ है ना। तो दवाई का अर्थ ये होता है बीमारी खत्म नहीं होती है, लेकिन तुमको बीमारी लगेगी नहीं। तो मैं आपके लिए एक औषधि लाया हूं, औषधि लाया हूं किसके लिए, माया नाशीवार लगी, माया को नाश करने के लिए एक औषधि लाया हूं। इसका अर्थ क्या है, बीमार आदमी के पास डॉक्टर 24 घंटा तो नहीं बैठा रहेगा, दवाई रखेगा ना, दवाई साथ रहती है, गोली साथ रहती है, डॉक्टर को साथ लेकर तो नहीं घूमेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में माया से निकलने के लिए भगवान ने बहुत सरलता से हमारे को ऐसी चीज दी है जो हमेशा हमारे साथ रह सकती। औषधि क्या लाए हैं, पूछे वो भगवान क्या औषधि लाए हैं, हम चाहते हैं कि हम जाग जाएं लेकिन उठ नहीं सकते। आप सब लोगों की ये इच्छा होती है कि हम सवेरे उठ जाएं, रात को तो ये सोच के सोते हैं कल सुबह सुबह सवेरे उठेंगे, ऐसा आप सोच के सोते हैं, नहीं सोते, लेकिन सुबह उठने के समय उठने की इच्छा नहीं होती। दो चार घंटे में रात को सोने से माया अपना इतना प्रभाव डालती है कि सुबह उठने की इच्छा, संकल्प करके सोते हैं फिर भी इच्छा नहीं होती उठने की। ऐसे एक एक्सपेरिमेंटली आपसे पूछते हैं, आप लोग घड़ी में कभी अलार्म लगा के सोते हैं, है ना, सुबह इतने बजे उठना है, तो अलार्म की घंटी बजती होगी ना सुबह। कितने लोग आप में से बैठे हैं उनका हाथ अलार्म की घंटी बंद करने के ऊपर जाता है, कितनों का पांव धरती के ऊपर पहले जाता है, घंटी नहीं बंद करते हैं और पांव नीचे रखते हैं, कितने? बस ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि हम उठना नहीं चाहते। घंटी हमने रखी थी हमारे उठाने के लिए, इसलिए जो जो लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं वो कहते हैं जब घंटी बजे तो हाथ घंटी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पांव जमीन के ऊपर जाना चाहिए। इसका मतलब आप अपने कर्तव्य के पालन करना, अपने वचन को मानना चाहते हो। वचन आपने किया था, घड़ी के साथ किया था, घड़ी ईमानदारी से उठा रही है, लेकिन आप उसकी बात मानने को तैयार है ऐसे करके, भाई 5 मिनट में उठता हूं ना। ये इस बात का पक्का प्रमाण है जिसका पांव जमीन पे गया घंटी बजी वो इस दुनिया के अंदर वचन का सच्चा है। आप अभी आपने सबने हाथ ऊपर किए थे कि घंटी बंद करके, क्योंकि घंटी जगा रही है, बंद करो। अच्छा जगा रहा है उसको ही बंद करते हैं, उठा रही है तो उठो ना। इसको कहते हैं ये सूक्ष्म एक्सपेरिमेंट जो हमको बताता है कि हमारी स्थिति कैसी है। हम बच्चों से कभी पूछते हैं कि आपको कौन सा सबसे दिन अच्छा लगता है स्कूल में, कौन सा स्कूल का बेटा दिन अच्छा है बताओ, क्या नाम? हाँ हाँ संडे। मंडे में क्या होता है बेटा? हाँ साधु है। हरे कृष्णा, क्या नाम बेटा? वही प्रतीक है। नहीं बच्चों से कभी पूछो आपको आपके बच्चे कौन सा दिन का, बच्चों को जो दिन अच्छा लगता है वो पेरेंट को अच्छा ही लगता है, वो कौन सा दिन है? हाँ वो दिन जो बच्चों को अच्छा नहीं बच्चों को अच्छा लगता है और पेरेंट को अच्छा नहीं लगता है वो कौन सा दिन है? साधु है। आप बोलिए आपको कौन सा दिन अच्छा नहीं लगता है? हाँ क्योंकि बच्चे घर में होते हैं। उस बेचारे मास्टर का हाल देखो जो 5 दिन पालता है। इसके पीछे सिद्धांत ये हम बताना चाहते हैं, बच्चों को संडे क्यों अच्छा है? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमसे काम लेने वाला नहीं है। इसका मतलब हम अथॉरिटी को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, ये हमारा कई जन्मों से अभ्यास हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमको नेम में चलाए। ये किसकी प्रवृत्ति होती है कि जो नेम में नहीं चलना चाहता है? पशु की। पशु नेम में नहीं चलना चाहता। किसी गधे को रेड लाइट पे रुकते देखा है? हाँ आदमी रुकता है ना, क्योंकि नेम में पशु नहीं चलना चाहता है, पशु नेम में नहीं चलना चाहता है। उसको ट्रेन करने में बहुत बड़ा प्रयास होता है फिर भी वो ट्रेन हो जाता है, लेकिन हम नहीं ट्रेन होते क्योंकि हम उससे ज्यादा बुद्धिमान है, हम उसका तोड़ कोई ना कोई कहीं से निकाल लेते हैं। औषधि लाया हूं आपके लिए। क्या औषधि लाए हैं महाप्रभु? हरि नाम महामंत्र लायो तुम्ही तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए भगवान कहते हैं हरि नाम महामंत्र लाया हूं। ये ऐसी औषधि है कि माया तो रहेगी लेकिन तुम्हारे को नहीं छुएगी। लेकिन इसके लिए एक शब्द लिख दिया है, ले मांगे मांग लो। हमने कहा ना जब उठते हुए पहले बच्चा मांगता है कुछ खाने को दो, तो जीवात्मा का खाना क्या है? हरि नाम। आदमी का खाना है रोटी सब्जी चावल, ये तो आदमी का खाना है, लेकिन आत्मा का खाना है हरि नाम। भोजन आत्मा का भी हरि नाम है रोज का, उसकी ये रोज की आवश्यकता है, नहीं दोगे तो मूर्छित पड़ा है। सोया हुआ नहीं, सोया शब्द लिखा है, ये बहुत बड़ा आपके ऊपर उपकार किया है भक्ति विनोद ने। हम तो मूर्छित हैं, आईसीयू में पड़े हुए, आने वाले रिश्तेदार को भी नहीं पहचानते, सच है कि झूठ है? आईसीयू में जो पड़ा होता है, जो अनकॉन्शियस होता है, कोमा में होता है, वो आप जाते हो पहचानते हैं आपको? वैसे हम भी ऐसे ही हो गए हैं, अपने घर से अपने सगे संबंधियों को निकाल दिया, आते हैं तो भी नहीं पहचानते। नहीं तो साथ रहते ना, क्यों नहीं रहते साथ परिवार सारे? क्यों नहीं रहते साथ? गहराई से सोचोगे इसका अर्थ यही आएगा कि हम नहीं पहचानते क्योंकि मूर्छित पड़े। इसलिए औषधि मांग के लेनी पड़ेगी, मांग के लेनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान कृपा करके हमको ये, आप कृपा कीजिए कि हम वचन अपने को निभा सकें, हमने जो आपसे वचन किया है उसको हम निभा सकें, ये हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो भक्ति विनोद हम सबकी जगह पे खड़े होकर कहते हैं कि आप नहीं मांगते हो, लेकिन आपको मैं आपके सबकी तरफ से प्रार्थना करके भगवान का चरण पकड़ता हूं कि ये औषधि आप यहीं छोड़ के जाइए, साथ मत ले जाइए। आप जा रहे हैं तो 48 साल में चले गए चेतना महाप्रभु, लेकिन ये औषधि तो यहां छोड़ के जाइए, आने वाले कोई भाग्यशाली इसको मांग के ले ले, अपने जन्म को सफल कर ले। तो ये औषधि हरि नाम, भगवान का नाम, ये इस संसार में हमको मांग के लेना चाहिए, अपने स्व इच्छा से जाके मांगना चाहिए कि ये हमको दीजिए। अस्पताल में आप जाते हो कि डॉक्टर आपके घर पूछने, ऐसे डॉक्टर अभी तक भगवान ने ऐसी स्थिति डॉक्टरों की बुरी नहीं की है कि दरवाजा खटखट के बोले आपके घर में कोई बीमार है दवाई चाहिए, ऐसी अभी स्थिति नहीं आई। हम जाते हैं डॉक्टर के पास मांगने के लिए दवाई, क्यों भाई अस्पताल हम जाते हैं ना, फोन भी हम करते हैं डॉक्टर को, तो दवाई लेने आपको जाना पड़ेगा ना, पहले ये तो पता लगाना चाहिए कि हम बीमार हैं तब दवाई लेने जाएंगे ना। तो क्या हम बीमार हैं, भौतिक रोग में पीड़ित हैं कि नहीं है, हमको आवश्यकता है दवाई की नहीं है? बहुत से लोगों को नहीं है, बहुत से लोगों को भगवान के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। भाई अपने आप को बीमार कैसे मानेंगे, मूर्छित पड़े हैं, मूर्छित के अपने आप को कोई अस्पताल ले जाएगा? दो चार आदमी को उठा के ले जाना पड़ता है, नहीं मूर्छित पड़े तभी तो बोला उठो, क्योंकि तुम सोए हुए हो, तुम नहीं ले सकते, तुम अपने आप जा नहीं सकते हो। इसलिए घर ये आवश्यकता है कि हमको पहले पता लगना चाहिए। इस दुनिया में आदमी केवल जब संकट में मुश्किल में आता है तभी भगवान याद आता है, और सबको मुश्किल में एक दिन पड़ना ही पड़ता है इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं कोई ऐसा आदमी है कि कभी उसके ऊपर कष्ट नहीं आया हो। तो जब तक अनुभव नहीं होगा, बहुत झटका नहीं लगेगा, तब तक भगवान याद नहीं आएगा। तो झटका लगने का मतलब जब तक जागेगा नहीं, किससे नहीं जागेगा, ये माया की नींद से जब तक जागेगा नहीं। तो ये हम उठते बैठते घूमते फिरते हैं लेकिन माया की निगोद में सोए हुए हैं। जब तक दवाई नहीं मांगेंगे तो भव रोग, इस रोग का नाम है भव रोग। भव कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहना, बार बार इस संसार में एक जोड़ी से दूसरी जोड़ी में बदलते रहना। इस भव रोग की औषधि क्या है? भव औषधि मनोभिराम, भगवान के नाम की औषधि है। फिर डॉक्टर कौन सा है जिसके लेनी चाहिए? भाई डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी, कौन डॉक्टर है? परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो। तो ये भी यहां एक सावधानी सिर्फ आपको बता के आज के सत्संग को यहां विराम देंगे। खांसी जुकाम हो तो स्टोर वाले से भी मेडिकल की एक गोली लाके काम चल सकता है, लेकिन दिल का ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर को अच्छी तरह से चकास के जाते हैं, ऐसे ठीक है कि नहीं? साधारण बीमारी हो तो कहीं से भी गोली दवाई ले सकते हैं, लेकिन दिल जब बदलनी होती है, दिल के ऑपरेशन है, तो डॉक्टर का बड़ा अच्छी तरह से पता करते हैं। ठीक इस तरीके से ये जो ऑपरेशन है, ये दिल बदलने का ऑपरेशन, दिल बदलने का ऑपरेशन है ये, और दिल बदलने के ऑपरेशन के लिए हमको डॉक्टर बहुत सावधानी से चुनना पड़ेगा। उसके लिए रिस्क उठाने के लिए 1% भी हम तैयार नहीं होने चाहिए। पूछेंगे भाई तुम पहले कौन कौन ऑपरेशन कराया अपने गांव के, ये सब ठीक हो गए ना, बच गए ना, तो उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नया कोई आए तो बड़ा रिस्क उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, इसलिए इसके लिए तो वही इंस्टीट्यूट जिसके अंदर यही ऑपरेशन होती है वहां जाना चाहिए। बिजली के ऑपरेशन में हार्ट इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कहा कि जो आप और आपके ट्रेन किए हुए डॉक्टर हैं उनसे ही दिल का ऑपरेशन हो सकता है, परीक्षित महाराज ये कहते हैं। तो साधु भी वो दिल की ऑपरेशन कर सकता है जो ट्रेन हो इस परंपरा में सुखदेव गोस्वामी की। अस्पतालों सब में इलाज होता है लेकिन डॉक्टर बहुत सोच समझ के किसी को जाके उसके हवाले करने की आवश्यकता होती है। तो हृदय बदलने का अर्थ क्या है? जागेगा, दवाई मांगेगा तो दिल बदलेगा। दिल बदलने का अर्थ है दिल के अंदर इस वक्त आपके क्या क्या पड़ा है, आपके दिल में इस वक्त क्या कौन सी मूर्तियां बनी हुई है, अपने दिल में इस वक्त क्या क्या पड़ा है ढूंढ के देखो। हाँ क्या है, क्या बोला?
एक महल और सपनों का।
फिर एक बात याद आ गई, एक आदमी को रात का सपना हुआ कि मैं मर गया हूं और उसका अकाउंट एक बैंक में था, उसने लिखा ये बैंक आपके सपने सच्चे करेगी। दूसरे दिन अकाउंट बंद के गई आया कि सपने में मर गया, ये मेरा सपना कहीं साचा न कर दे। इस वक्त दिल में बहुत से मूर्तियां बनी हुई हैं लेकिन उसमें से कोई एक विशेष मूर्ति है उसको हम दुनिया को दिखाने के लिए दिल का लॉकेट बना के उसमें लटकाते हैं। हम बनाते हैं दिल का रूप लॉकेट बनाते हैं ना, इसमें कोई मूर्ति लटकाते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य दुनिया को दिखाना क्या होता है कि ये हमारे दिल में, यही ना कि अंदर खोल के तो नहीं दिखा सकते हनुमान की तरह के राम सीताराम है, लेकिन दुनिया को कहते हैं ये दिल का हमने बड़ा अच्छा लॉकेट बनाया है, देखो खोल के इसके अंदर हमने ये फोटो लगा के रखा है। इसका मतलब दिल में कोई फोटो होना चाहिए ना, तो जो जो फोटो अभी दिल में है। और फिर ये भी मजे की बात है कि जो फोटो 5-7 साल दिल का लगाते फिर बदलते कि ये अब ठीक नहीं, अभी दूसरा बदल के इसमें लगाते हैं। तो इसका मतलब दिल के ऑपरेशन आप भी करते रहते हैं, कभी फोटो बदलते रहते हैं, आजकल ऐसा ही नहीं बदलते रहते हैं। जब बच्चे होते हैं तो अपने पिता का रखते हैं और जब शादी करते हैं तो फिर पति पत्नी का रखते हैं, और इस तरीके से फोटो भी बदलते रहते हैं बहुत से लोग समय समय के अनुसार। कुछ साधु महात्मा का लगा के रख देते हैं। तो बाहर वाली दिल से ये पता लगता है कि अंदर दिल में किसी न किसी का फोटो रखा होता है, तभी उसका बाहर। तो दिल की ऑपरेशन का मतलब है कि जो माया के ये सब फोटो अंदर है उन सब की ऑपरेशन करके निकालकर और भगवान श्याम सुंदर का अंदर फोटो जो स्थापित कर सके वो दिल की ऑपरेशन वाला डॉक्टर। ऐसे ऑपरेशन कोई कर सके कि भगवान हर सब दिखे, कैसे दिखे? जैसे हनुमान को राम जी हमेशा हृदय में दिखते थे, ऐसी ऑपरेशन जिसकी होती है वो अमर हो जाता है हनुमान की तरह। आज भी हनुमान की पूजा सब जगह होती है ना, उसने अपने दिल के अंदर फोटो सीताराम का दिखा दिया था। इसलिए ऐसी जिसके दिल की ऑपरेशन होगी वो अमर हो जाएगा, नहीं तो ये डॉक्टर वाले दिल की ऑपरेशन वाला जल्द मरने के बहुत निकट जल्दी पहुंचेगा, बड़ा सावधान रहेगा, पता नहीं अब दिल कब बंद होगी। लेकिन ये दिल की ऑपरेशन आवश्यकता है इसकी। तो आज इस भजन ही था, तो इसके ऊपर चर्चा ये है कि हम इस दुनिया में वायदा भगवान से करके आए हैं कि हम आपको याद करके वापस आपके पास लौट के आएंगे। अभी ठीक है, हमको इस हमारे किसी कर्म के कारण हमको दुनिया में जाना पड़ रहा है, तो इस दुनिया को आप ऐसे समझिए कि ड्रामा एक है, आपको ड्रामे में आप कोई पार्ट ले रहे हो। आपको किसी का बेटा बनना है, किसी का पति बनना है, किसी का भाई बनना है, लेकिन ये ड्रामे के स्टेज के ऊपर सारा काम हो रहा है। लेकिन ड्रामा सारी उम्र ड्रामे में तो नहीं रह सकते, आकर तो अपने घर जाना पड़ेगा ना। ये दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं ये ड्रामा है, उसके हम अलग अलग पात्र हैं, तो हमको इसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ड्रामा करना चाहे, जाए राम का रोल करना उधर रावण का काम करना शुरू करे, ऐसा ड्रामा भी नहीं करना चाहिए। जो ड्रामे का रोल है उसको निभाओ अच्छी तरह से, लेकिन ड्रामे को घर मान के तो उधर नहीं बैठना चाहिए ना। ये तो बहुत सरल बात समझ में आती है ना कि दुनिया में जो भी हमारे संबंध है ये एक स्टेज के ऊपर ड्रामा है। कोई ड्रामा 3 घंटे चलता है, कोई ड्रामा 10 घंटे चलता है, ये ड्रामा 60-70-80 साल चलता है। क्या पुलिस का रोल करती है? होगा कोई उसी वक्त आ गया होगा कहीं से, किसी डिपार्टमेंट में पढ़ा होगा न कहना चाहता भाई, जो रावण का रोल करके घर में भी आके सबको मारना शुरू करेगा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, फिर ड्रामे में ही करना चाहिए ना। तो असल में ये एक लंबा ड्रामा है जिसके अंदर हमको अपने पात्र का जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, लेकिन सदा ही ये ड्रामा रहेगा ऐसे नहीं मानना चाहिए। आखिर तो अपने घर जाना है, तो अपना घर कहाँ है? ये भी जानकारी तो ये यही कहने आए हैं चेतन महाप्रभु के, आप वापस, आपको मैं लेने आया हूं। आप ड्रामे में इतने मदमस्त हो गए कि आप ड्रामे को ही सच मान के बैठ गए हो कि यही हमेशा ऐसे रहते रहेगा, ऐसे रह नहीं सकता। ड्रामे में भी लोग रोते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं, कोई आता है कोई जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ड्रामा है। तो असल को भूलना नहीं चाहिए, नकल के ऊपर हमेशा ड्रामे में रोल असली करते हैं लेकिन वहां रह नहीं पाते हैं। तो इसलिए चेतना महाप्रभु के अंतर्गत ये कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था का उद्देश्य ये है कि हम कैसे अपने ड्रामे को अच्छी तरह से निभाएं, अपने कर्तव्य और पात्रता को हम किस तरीके से अपने रोल को ठीक तरह से निभाएं, ये पहली शिक्षा है कि जो हमारा कर्तव्य है। ड्रामा अच्छे से अच्छा वो कर सकता है जो उसी में रम जाए, लेकिन फिर भी अपने असली जो पहचान है उसको न भूले। तो ये शिक्षा है महाप्रभु के अंतर्गत कि हमको ड्रामा ठीक तरह से करना चाहिए लेकिन अपने घर को नहीं भूलना चाहिए। तो करुणा करके भगवान श्री महाप्रभु आके हमको यहां से ले जाने के लिए हरिनाम लेकर आए हैं और श्री प्रभुपाद की कृपा से ये आपको घर घर में मिल रहा है, आप इसका लाभ लीजिए और मानव जन्म को सफल कीजिए। हरे कृष्ण। Om Namah Shivaya।